आज की इस विशेष भेंटवार्ता में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे विश्व में आत्महत्या निरोध दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं पूरे विश्व में हमारे देश सहित चिंता का विषय हैं और हम सबको इस पर बात करना, इसके कारणों पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज का विषय जो हमने चुना है वो है आत्महत्या नहीं आत्मविश्वास चुनें, स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ें। और इस संदर्भ में बातें करने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक कुमार दुबे। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद सुप्रिया जी। आकाशवाणी बिलासपुर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि आज का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं जो पूरे देश में आज चिंता का विषय है और लगातार बढ़ता तनाव अवसाद जिसके कारण आत्महत्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके चलते किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होना पड़ता है या वो मजबूर हो जाता है।
बहुत ही गंभीर विषय आपने चुना है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर आज के समय में ये जो विषय है आत्महत्या, वास्तव में इसके आंकड़े हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। भारत में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके आंकड़े कहते हैं कि प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में तकरीबन 12 से 12.4% लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश भारत में जहाँ पे यूं कहिए कि अनुकूलन की बहुत अच्छी स्थिति होने के बाद अगर ऐसे आंकड़े आ रहे हैं तो हम सभी के लिए ये विषय बहुत सोचनीय है। आमतौर पर देखा जाता है कि यह आत्महत्या जैसे विचार हमारे मन में तब आते हैं जब हमें अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई आशा नहीं दिखती, जब हमें अपने जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, जब हम किसी भी तरीके से अपनी कठिनाइयाँ या चुनौतियों से निकल पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तब हमारा मन आत्महत्या जैसे विषय की तरफ प्रवृत्त होता है। तो देखा जाता है साथियों कि आज के समय में जो हमारा युवा वर्ग है या जो हमारा मध्यम आयु का वर्ग है या जो हमारा गृहस्थ है या हमारा किसान है, जो हमारा मजदूर है, अगर उनमें ये आत्महत्या की स्थिति देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी परेशानियों या चुनौतियों से निकल पाने में अपने आप को अकेले सक्षम नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि अकेलापन, लोगों से अपनी दुख और परेशानी को नहीं बांट पाने की स्थिति इस परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। जैसे परिवार के संतुलन बदल रहे हैं, आज के समय में एकांकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, संयुक्त परिवार का प्रचलन कम होता जा रहा है, अच्छे मित्र या अच्छी कंपनी बहुत कम होती जा रही है और हम अपनी कोई भी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि आत्महत्या करने वाले लोग ज़्यादातर एकाकी जीवन जीने लगते हैं, समाज से, परिवार से, व्यवसाय से, लोगों से कट जाते हैं। तो अगर हम इस पे गौर करें कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ हम अपने आसपास के जो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट के लोग हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे मित्र, इनसे अपनी बातें या अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाना, या हमारे थोड़े से दूर हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में या हमारे रिश्ते के क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर पाना, या हम हमारे समाज में जहाँ हम जिस जगह जुड़े हुए हैं वहाँ पर अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को नहीं बाँट पाना, इस परेशानी का सबसे प्रमुख कारण है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये परेशानी जब बढ़ती है तो धीरे धीरे अवसाद या उदासी का रूप ले लेती है
जी।
तो अवसाद की बात हम जब करते हैं तो क्या ये एक शारीरिक बीमारी के रूप में हमें समझना चाहिए?
बहुत गहराई से बताना चाहूँगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग हमारे जीवन को 4 घटकों के माध्यम से संचालित करते हैं। ये हमारा जो शरीर है जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, इसके साथ हमें इस पूरे प्रकृति से जुड़ने के लिए जो हमारे सेंसरी ऑर्गन इंद्रिय हैं वो दूसरा विषय है, तीसरा इस शरीर और इंद्रियों को सब्जेक्ट के साथ जोड़ के हमें कोई भी चीज़ के साथ जुड़ना करने वाला जो हमारा मन होता है, और चौथा जो हमारी आंतरिक स्थिति जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं। तो इस तरीके से शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये 4 चीज़ें होती हैं जिससे हमारी पूरी लाइफ चलती है। इसमें जो हमारा मन होता है जिसको हम सत्व भी कहते हैं, वो वास्तव में ब्रिज, एक तरीके से पुल के जैसा काम करता है। उसका कार्य है कि वो जो भी विषय हैं उनको इंद्रियों के माध्यम से हमारे से जोड़ता है। तो जब हम ऐसे विषयों के साथ जुड़ते हैं जो हमको सही सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा स्वाद लेना, अच्छा गंध लेना, इस तरीके की स्थितियों में जब हम रहते हैं तो हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से अच्छे विषय हमारे शरीर को मिलते हैं और हम ऊर्जावान होते हैं और इससे हमारे सत्व का उत्तम स्थिति का निर्माण होता है। उससे हम एक अच्छा व्यवहार कर पाते हैं और अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं। लेकिन जब हम लगातार ऐसे विषयों के साथ जुड़ते हैं जिनसे हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, कहीं ऐसी चीज़ों में श्रवण करना, सुनना जो हमको, हमारी ऊर्जा को कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ले जा रहा हो, ऐसी स्पर्श, ऐसा गंध जिसमें गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सभी हमको हमारे ऊर्जा के स्तर को धीरे धीरे गिराती हैं।
और नशे की चीज़ें भी इसी में ही आती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, नशा तो इसमें बहुत बड़ा एक भाग बनता है जिसमें कि हम बहुत बुरी तरीके से अपने नकारात्मक ऊर्जा की तरफ चले जाते हैं और उससे हम अपने विषयों में ना सही तरीके से इनिशिएट कर पाते हैं और ना ही अपनी क्रिया को सही समय पर रोक पाते हैं।
बिल्कुल।
तो इससे हमें अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है और धीरे धीरे क्या होता है कि हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं।
डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छे से आपने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और उसके बाद उसके बिगड़ने की स्थिति और उनके कारणों पर प्रकाश डाला। अब आयुर्वेद अपने आप में बहुत अच्छी जीवन शैली की ओर मनुष्य को ले जाता है
जी।
तो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए?
साथियों, ये एक ऐसी बात है जिसमें कि हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति के नियमों का ध्यान करके अगर हमें अपना जीवन जिया जाए तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी ऊर्जा बहुत आसानी के साथ मिलती है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों ऊर्जा होती है। तो जितना ही हम प्रकृति के साथ जुड़ के अपने कार्य करते हैं उतना ही एक व्यक्ति अच्छे से अच्छी ऊर्जा लेके अपने शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रह सकता है। तो कुछ सामान्य सी बातें मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ रखना चाहूँगा कि वास्तव में हम लोग प्रकृति से चार चीज़ों से जुड़ते हैं, जिसमें हम आहार के माध्यम से जुड़ते हैं, जिससे हम विहार के माध्यम से जुड़ते हैं, जिसमें हम विचार के माध्यम से जुड़ते हैं और जिसमें हम आचार के माध्यम से जुड़ते हैं। तो ये आहार, विहार, आचार और विचार, ये सामान्य चार चीज़ें हैं जिसे एक मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है और अच्छी ऊर्जा प्राप्त करके अपना एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी उसकी मेंटेन होती है। लेकिन साथियों, ये जो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है, इसको पाने के लिए हमको प्रकृति के साथ तीन तरीके से जुड़ना पड़ता है। जो आहार है उसके लिए हमको कुछ भोजन के नियम का पालन करना पड़ता है। प्रकृति में कहा जाता है कि ऐसे भोजन के तत्व जो हमको संतुलित भोजन की स्थिति में ले जाते हैं
जी,
और साथ में वो हमारे शरीर के चारों घटकों, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा को पोषण करते हैं, ऐसे भोजन का सेवन करना, ऐसा विचार करना कि भोजन के अंदर सिर्फ मात्रा नहीं, भोजन के प्रकार के बारे में, भोजन हितकर है, रीजनल है या सीजनल है, भोजन का समय कैसा है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का विचार करते हैं। और आज के समय में बच्चों के लिए खासकर और युवा वर्ग के लिए इस बात को रखना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते, हमें दिखता है कि हम मल्टीटास्किंग हैं लेकिन वास्तव में हम एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन भी हमारे लिए एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है, अगर हम उसको पूरे तन्मयता के साथ, पूरा फोकस्ड होके, पूरा ध्यान केंद्रित करके ग्रहण करते हैं तो वो भोजन पहले शरीर को पोषण देता है, फिर अगर हम उसमें और अनुकूलन करते हैं तब वो शरीर के साथ साथ हमारे इंद्रियों को पोषण देता है, और अगर उसमें हम बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता के साथ, पूरे मनो स्थिति के साथ भोजन करते हैं तब वो हमारे सत्व और मन को पोषण देता है। और अगर हम अपने आत्मिक स्थिति का विचार करके हम क्या करते हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारी मनोस्थिति क्या है, तो हमारे लिए भोजन कैसा होना चाहिए, इतना सूक्ष्म विचार करके अगर हम भोजन करते हैं तब वो हमारी आत्मा तक को पोषण देता है।
बिल्कुल।
तो एक ही भोजन हम शरीर से इंद्रिय, इंद्रिय से मन और मन से आत्मा तक पहुँचा के अपने हायर फंक्शन को एक अच्छी कंडीशन में पहुँचा सकते हैं। और आज के समय में युवाओं के साथ ऐसा देखा जाता है कि वो ज़्यादातर टीवी देखते हुए भोजन करना, मोबाइल चलाते हुए भोजन करना, या किसी से बातचीत या गपशप करते हुए भोजन करना, तो देखा जाता है कि ये भोजन सिर्फ शरीर तक ऊर्जा दे पाता है, इंद्रिय और मन तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर इसका अभ्यास ऐसे किया गया तो ये हमें मानसिक ऊर्जा उतनी अच्छी स्तर की नहीं दे सकता जैसा हमें एक अवसाद इत्यादि की स्थितियों में बचने के लिए चाहिए।
बहुत सही, और इतनी अद्भुत बात आपने बताई कि किस प्रकार आहार से जुड़ी बातें हैं और उस मनोयोग और एकाग्रता की बात है। लेकिन परिस्थितियां जीवन में बदलती रहती हैं डॉक्टर साहब, और कभी ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं कि उनका सामना करने का साहस हमारे अंदर नहीं हो पाता है, और उस समय की जो कमजोर क्षण है उस दौरान ही इस तरह की स्थितियां उपजती हैं। तो वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
ये एक ऐसी बात है जिसमें मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक शब्द है आधुनिक विज्ञान में, इसको कहते हैं रिजिलियंस। किसी भी विपरीत परिस्थितियों से उबर कर निकल आने की जो क्षमता होती है, जिसको हम बाउंसिंग बैक टेक्निक कहते हैं, कि जब भी हमारी कठिन परिस्थितियाँ हों तो हम वहाँ से कैसे निकल आएं।
बिल्कुल।
तो इसमें भी हमारा आयुर्वेद का विज्ञान एक बहुत गहरी बात कहता है कि मनुष्य अपने आसपास ऐसे 7 तरीके के लोगों को बना कर रखे कि जब भी विकट परिस्थितियां हैं तो वो आपको उसमें रास्ता दिखाएं। आज ये मैं अपने इस मंच के माध्यम से यहाँ पे अपने साथियों को, अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने आमतौर पर कई सारे स्थितियों में ऐसे मित्र इत्यादि की बात की है। आयुर्वेद ऐसे 7 मित्र बनाने की बात करता है। सबसे पहले कहते हैं कि जो बुद्धि में जो है श्रेष्ठ हों उनको अपने आसपास रखना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि जो विद्या में हमसे अच्छे हों, जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन ले रखी हो, उनको अपने दोस्त अपनी मंडली में रखना चाहिए, वो हमें इस परिस्थिति में हमारे लिए उपाय बता सकते हैं। तीसरे ऐसे लोग जो हमारे साथ उम्र में हमसे बड़े हों, जिनका इस संसार और इस दुनिया में हमसे ज़्यादा अनुभव है, वैसे लोगों को अपनी मंडली में रखना चाहिए। चौथा ये कहते हैं कि सील अर्थात ऐसे लोग जो मॉडेस्ट हों, जिनके अंदर दया भाव करुणा का भाव हो, ऐसे लोगों को अपनी मंडली में रखना चाहिए। पांचवा है धैर्य, ऐसे लोग जो बहुत पेशेंस वाले हैं, जो कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य पर बने रहते हैं, ऐसे धैर्यवान लोगों को भी अपने मित्र मंडली में रखना चाहिए। छठवां है स्मृति, ऐसे लोग जो अपने मेमोरी से, अपने अनुभवों से बहुत कुछ चीज़ों को अपने साथ समाहित किए हुए हैं, अपने कटु अनुभवों से किस तरीके से वो यहाँ से निकल के आए हैं, ऐसे जो लोग मेमोरी में जिन्होंने इन सब चीज़ों को बना के रखा हुआ है, ऐसे लोगों को अपनी मित्र मंडली में रखना चाहिए। और जो लास्ट है सातवां, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं समाधि। समाधि का मतलब होता है किसी भी विषय पर एकाग्रचित होकर चलने वाला दृढ़ संकल्पित व्यक्ति। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ गोल बना रखा है और लगातार उस गोल पे फोकस्ड हैं, तो आप जब कभी भी ऐसी अवस्थाओं में जाएंगे तो वो आपको फिर से आपको दोबारा खड़े कर देंगे आपके मार्ग पर और आप वहाँ से निकल आएंगे। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि बुद्धि, विद्या, व्यय, सील, धैर्य, स्मृति, समाधि, भी ऐसे 7 तरीके के मित्र बनाइए और आप इस नकारात्मक विचारधारा से निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। और बातें करें, आप लोग अपने जो भी आपकी मनोभावना है उसको व्यक्त करें, अपने में ना रखें। भारत सरकार ने इसके लिए निःशुल्क स्थिति में ई मानस करके एक सेवा जो है शुरू कर रखी है। आपको आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसमें ऐसा लगता है कि वो एकांतवासी हो गया है, अवसादग्रस्त हो गया है, या उसने कभी ऐसा कोई गंभीर कदम उठाया है या उठाने की संभावना है, तो आप ज़रूर उससे बात करें, उसको अकेला ना छोड़ें।
बहुत सही, और मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे ढंग से खान पान करें, योग करें, विहार करें, अच्छी नींद लें, तो मेरे ख्याल से मन का पोषण तो होता है।
बिल्कुल।
फिर भी आप मन के पोषण के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस चीज़ को सबसे मुख्य मानते हैं अपनी ज़िंदगी में?
वर्तमान समय में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें सबसे बहुत बड़ा रोल है वो है नींद का। जैसा कि मैंने आहार के बारे में एक सूक्ष्मता से बात की, वैसे ही नींद का एक विज्ञान है कि नींद का प्रकृति के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। जब हमारे वातावरण में अंधकार की स्थिति आ जाती है, चंद्रमा का उदय हो जाता है और मन अपने सभी कार्यों से हट जाता है, तब हम लोग अपने नींद में जाते हैं। और नींद का काम होता है कि ये हमारे इंद्रियों का पोषण करता है। और साथियों, यहाँ एक बहुत गहरी बात बताना चाहूँगा, आधुनिक विज्ञान में 5 इंद्रियाँ बताई गई हैं, लेकिन आयुर्वेद ने 11 इंद्रियां कही हैं। 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रिय और 1 दोनों को जोड़ने वाली उभय इंद्रिय, जिसको हम मन कहते हैं। तो अगर अपने मन को सही पोषण देना है तो हमको रात्रि स्वभाव प्रभुआ मध्य रात्रि की निद्रा लेनी होगी, अर्थात रात में 9 से या 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो समय है वो सोने का समय है। अगर आप उसमें किसी व्यवसाय में नहीं है, किसी ऐसे कार्य में नहीं है जिसमें रात्रि जागरण आवश्यक है, तो आप गंभीर निद्रा लीजिए, अच्छी निद्रा लीजिए, और उसके लिए कुछ ऐसा शारीरिक क्रियाकलाप, योग, व्यायाम इत्यादि करिए जिससे शरीर में थकावट उत्पन्न हो और गहरी निद्रा आए, और सुबह उठने के बाद सुख प्रतिबोधन, उठने के बाद आप अच्छा और तरोताज़ा महसूस करें, और बिना स्वप्न वाली निद्रा हो, तब आप समझिए कि आपकी निद्रा ने आपके मन को अच्छा पोषण दिया है। तो साथियों, आज के समय में हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, रात में जगने के सारे उपकरण उपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। खासकर युवा वर्ग, बच्चे, जो लोग इस कार्य में रात में देर देर तक जगते हैं, उनके साथ ऐसा देखा जाता है कि उनके मन का अच्छा पोषण नहीं हो पाता है, तब ये ऐसी स्थितियां उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेरी आप सबसे ये अपील है, ये विनती है कि आप सभी रात के समय में एक अच्छी स्वस्थ निद्रा लीजिए, और जिससे आप एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में जा सकते हैं।
बहुत सही, बहुत सुंदर, और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातों को इस छोटे से समय में समेटा है, और जो भी श्रोता आज इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो अंदर से इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या कभी स्थायी नहीं रहती है, उसका कोई ना कोई समाधान कभी निकलेगा, लेकिन आत्महत्या एक अंत है और उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो वो आत्मविश्वास हमें चुनना है। और चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जब कभी भी आपके मन में इस तरीके के कोई विचार आए, हमसे शेयर करें, हमसे बात करें, अपने आसपास में बात करें, अकेले ना रहें, और जितना हो सके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जितना ही आप व्यक्त करेंगे उतना आप सहज हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत अनमोल है, और आप अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने लायक हैं। इसलिए ऐसे किसी कदम से बचें और स्वस्थ जीवन जिए।
आत्महत्या नहीं, आत्मविश्वास चुने, स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े। ये सारी बातें अपने आप में स्पष्ट हैं आज की बातचीत से। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आज आपने बड़े विस्तार से सारी बातों पर हमारे श्रोताओं के समक्ष अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारगर्भित बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया जी, आपने मुझे अवसर दिया। आकाशवाणी बिलासपुर के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।